Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and matters related with them. The numbers to call us on are 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra.
धन्यवाद राजेश और नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं, 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
वार्म वेलकम स्नेहा।
थैंक यू।
पहले हेडलाइंस के साथ राजेश।
Labour force participation rate for aged 15 and above increases from nearly 50% to over 61% in 5 years from FY18 to FY24, says MOSPI data. After snapping 2 weeks of rising streak, domestic markets to focus on RBI policy meet, quarterly earnings and tariff announcements for Q's next week. And global gold prices declined over 2.5% last week. Silver registers worst week in over 4.5 years.
वित्त वर्ष 2018 से 2024 के बीच 15 साल और उससे ऊपर के लोगों की श्रम शक्ति में भागीदारी लगभग 50% से बढ़कर 61% हो गई, कहा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। मार्च के आखिरी 2 हफ्तों में बढ़त के बाद पिछले हफ्ते गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। अगले हफ्ते नजर रहेगी रिजर्व बैंक की बैठक, तिमाही आमदनी और आयात शुल्कों की घोषणा पर। और पिछले सप्ताह विश्व बाजार में सोने की कीमतों में 2.5% से ज्यादा की गिरावट, चांदी के लिए 4.5 साल का सबसे बुरा सप्ताह।
Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSPI, today released the 26th edition of its publication, Women and Men in India 2024, Selected Indicators and Data. The publication highlights that primary and higher secondary levels have consistently higher gender parity index, indicating strong female enrollment. Upper primary and elementary levels saw fluctuations but remained close to parity. The publication indicated that the labour force participation rate in usual status for individuals aged 15 and older has increased from 49.8% in 2017-18 to 60.1% in 2023-24. The report also highlighted that women own 39% of all bank accounts and contribute to 39.7% of total deposits. Their participation is highest in rural areas, where they make up 42.2% of account holders. It also emphasized a rise in Demat account over the years. From March 31, 2021 to November 30, 2024, the total number of Demat accounts increased from 33.26 million to 143.02 million, marking more than a fourfold rise.
चलिए हमारे पहले कॉलर इंतजार कर रहे हैं फरीदाबाद से, सुभाष हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। जी सुभाष, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
जी
सर मैं ये पूछना चाहता था, एक पीपीएफ में मेरा अकाउंट है यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में
जी,
तो वहाँ पर एक्चुअल में मैंने 15 साल कंप्लीट होने के बाद 5 साल के लिए एक्सटेंड किया था उसको, तो 4 साल कंप्लीट हो गए सर मार्च 31 को 2025 में। तो अभी मुझे सर पैसे की जरूरत थी तो मैं वहां निकालने के लिए गया, तो उन्होंने मुझे बोला कि 45% पैसा निकाल सकते हो आप, तो मुझे सर पैसे की ज्यादा जरूरत है, मैं सारा पैसा निकालना चाहता हूं, तो लेकिन वहां पर वो मना कर रहे हैं सर, मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, प्री मैच्योर उसको क्लोज कर सकते हैं सर?
इसके बारे में एक्चुअली आज हमारा कार्यक्रम म्यूचुअल फंड पर केंद्रित है और इसके बारे में कल अगर आप कॉल करें तो हमारे एक्सपर्ट बेहतर जवाब दे पाएंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं, राजेश दिल्ली से है, आरएस दहिया हमारे साथ। आरएस दहिया साहब स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
सर नमस्कार।
नमस्कार
सर, माय क्वेश्चन टू द एक्सपर्ट इज दैट आई हैव इन्वेस्टेड इन 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स, JM फ्लेक्सीकैप, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सीकैप एंड इन्वेस्को इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। I want to know that is my selection good for as a good performing funds or any change is required? And my second question is that I have invested in about 25 to 26 various mutual fund schemes, because some schemes which were doing well, they are not doing well now, so we tend to invest them, and in case we withdraw money from there, then we have to pay long term capital gain. So it is better to stay invested. What should I do with such a wide portfolio?
जी, आरएस दहिया जी, द क्वेश्चन दैट यू हैव आस्ड रिगार्डिंग द 3 फंड्स दैट यू मेंशन, आंसरिंग दैट फर्स्ट, सो द फंड्स दैट यू मेंशन, वन वाज जेएम फ्लेक्सी कैप एंड द अदर वाज बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप। बोथ आर डिसेंट फंड्स एंड हैव बीन डूइंग डिसेंटली वेल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो यू मे कंटिन्यू विद दोज फंड्स। अनदर फंड दैट यू मेंशन, वाइल आई वॉज नॉट एबल टू हियर दी, ओके, सो इन्वेस्को इन्फ्रा, एंड एज द नेम सजेस्ट, दिस वन इज अ थीमेटिक फंड, सेक्टर फंड एमिंग एट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। So while you are invested in FlexiCap, which are diversified funds, which may also have exposure to those companies which you have been getting exposure to via Invesco Infra, I would say just ensure that your bulk of money is invested in diversified set like the FlexiCap funds that you mentioned, and Infra is a very supplementary kind of an allocation in your overall portfolio. The important point that you raised is that you have actually become sort of a collector of funds, and too often investors get into this habit that one fund is not doing well, other fund is not doing well, so let's just go in and buy another fund by stopping their SIPs. And you have actually answered the question yourself that it is better to stick with the diversified lot for some time, because even best of funds go through phases, and when you remain invested through those phases, it is when that you generate returns. Because quite often a bulk of funds like 25 or 26 in your portfolio, you are not able to track as well. So I would say now, if you are looking to sort of declutter your portfolio, so 2-3 broad principles that I can share with you would be that maybe you can sell off or exit from those funds which are currently also not making, let's say, even 5% of your portfolio, which means even if you will be getting some handsome returns there, but they are not very big part of your portfolio. So those returns will actually not generate meaningfully enough to your overall portfolio returns. The other would be, like I mentioned, it is always advisable to stick with diversified funds so that you are not sort of, your fund does not move with the cycles of that, a sector poses you through. So maybe sector and thematic funds are also a kind of funds that you can look at to reduce the exposure. While doing this, maybe you will be able to come down from 25 to 26 to a single digit number.
So would you advise that he takes help of the portfolio manager, because on his own, would he be able to do it?
The user has been able to build this kind of a portfolio by understanding, I would suppose. So in case he or she is not able to do that, then definitely you should take help of a distributor, or let's say the online fintech apps that are there that help you do that. So, yeah.
Okay, joining us from Mysuru is Kumar Naik. A warm welcome, Kumar.
Thank you, sir. Good evening, entire team.
Good evening.
I'm Kumar Naik from Karnataka, Mysuru. So, since I'm a basic learner, I want to understand one thing, madam. Give a example, what is the difference between the mutual fund and share market? So, this this concept I want to understand better.
Right. To explain the difference, actually, they are both interlinked. So, share market is, you can understand stock market as a platform which allows you to get ownership of a company. So, and how do you get that ownership? These companies present themselves as shares. Their pieces are known as shares. And you are able to buy those directly from the share market and own some percentage of profits of that company. While mutual funds, on the other hand, are a diversified set, they invest in those shares only. But you invest in a mutual fund and it acts as an intermediary which picks those shares from the stock market only, from the share market only. Here I'm talking about equity mutual funds. So if you are a basic learner, you can understand it this way, that if you'll invest in a share directly through the market or through a mutual fund, both will get you the same exposure. Just that via mutual fund, you'll be able to, by investing in one single fund, you'll be able to get hold of some 20 to 30 shares.
Delhi se Madan saab hamare saath hain.
Invest in a mutual.
Swagat hai aapka, sawal puchhein.
Hello.
Ji, swagat hai aapka, sawal puchhein.
Haan ji, Market Mantra team ko mera namaskar.
Ji, namaskar.
मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैं सिप करता हूँ फॉर लास्ट 7-8 इयर्स. मैं सीनियर सिटीजन हूँ और हमारे सिप जो है ना, आईसीएफ प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, निप्पन इंडिया मल्टी कैप फंड, एचडीएफसी फोकस 30 फंड, इन चार फंड से हमारा सिप जा रहा है. तो जैसे अब ट्रम्प की ये टैरिफ वार हो रहा है, उसमें प्राइसेस काफी डाउन आ रही है. मुझे ओवरऑल लॉस तो नहीं है, बट आई वांटेड टू, शुड आई पॉज इट, शुड आई स्टॉप इट, और शुड आई कंटिन्यू? दिस इज माय मेन क्वेश्चन विद द एमएफ एक्सपर्ट. प्लीज गाइड मी. थैंक यू.
राइट. सो मदान, टू आंसर योर क्वेश्चन, व्हाइल आई अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी दैट वी आर सीइंग विद एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग एट ग्लोबल लेवल्स एंड द इम्पैक्ट दैट वी आर सीइंग हियर, बट द मेन पॉइंट हियर इज दैट द सिलेक्शन ऑफ योर फंड इज pretty decent, and I would say time is the key here. So since you have been in the market for 7 to 8 years now, you've seen worse than what we are seeing right now, and I'm pretty sure through those worst periods what kind of returns you have been generating. Like you yourself mentioned, while the prices are going down, your portfolio is still in positive, and that is the result of the fine funds that you have been able to select, as well as the the patience of sticking to it. So I would say, while we cannot outguess what will happen in the market next, our edge is basically staying calm and staying investing, sticking to our plan. So ensure that you stick with your funds, you continue your SIPs like you have been doing, and you only redeem when you actually need that money.
So in the given scenario, would you advise that people kind of look at other viable portfolios or funds which could give you more? So, say large caps, for example.
So, I would not say that's a way to look at that the current market is like this and that is why you should be investing in large caps. You should be taking exposure to equity as a whole, as an asset class. Basically, if you have time in your hand and you also have surplus to invest in, a diversified mix of, let's say, some portion of large cap with a very limited portion of mid and small cap helps you do fine over a long period of time.
We'll continue our discussion on this. In the meantime, we are joined in by Deva from Chennai. A warm welcome, Deva.
Yes, good evening, sir.
Good evening. Please ask your question.
Hello.
Yeah, please ask your question.
Yeah, good evening. I have invested in mutual fund.
Yeah.
Okay. I'm a senior citizen. I don't have unit facility.
Okay. What?
And
we didn't get your last
nominee.
What, you don't have what?
Nominee.
Oh, you don't have a nominee.
Yeah, no family members, nobody. Under these circumstances, what should I do? Should I select any of my friends circle and put them as my nominee?
See, the choice, I think, on behalf of Sneha, I can say, is yours completely. It is up to you who to nominate. We cannot advise you who you should nominate. This is your choice. If your friends of near ones are close to being your family, then perhaps he should.
Ya kisi institute ko dena chahe ya kahin bhi. Ji. Agli khabar pe nazar dalte hain hum. पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद अब अगले सप्ताह देश के शेयर बाजार की नजर भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक मार्च में खत्म हुई तिमाही में कंपनियों की आमदनी दुनिया के कई देशों द्वारा आयात शुल्क की घोषणाओं और मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर रहेगी. इससे पहले मार्च के अंतिम दो सप्ताहों में बाजार में बढ़त बनी हुई थी. पिछले हफ्ते अमेरिका के प्रेसिडेंट द्वारा आयात शुल्क की नई दरों की घोषणाओं से वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ गया, जिससे सहमकर सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 2.5% की गिरावट देखी गई. पिछले सप्ताह सेंसेक्स 2050 अंक गिरकर 75,365 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 615 अंक नीचे 22,904 पर आकर रुका. देश के बाजारों की नजर सोमवार को शुरू होने वाली एमपीसी की बैठक पर रहेगी. नई दरों की घोषणा 9 अप्रैल को की जाएगी. इसके अलावा बृहस्पतिवार को टीसीएस की तिमाही आमदनी के आंकड़े आएंगे, शुक्रवार को आईआईपी और मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी किए जाएंगे. विश्व मंच पर निवेशक अमेरिका की मुद्रास्फीति के आंकड़ों के साथ साथ एफओएमसी की बैठक के फैसलों पर कड़ी नजर रखेंगे. बृहस्पतिवार को अमेरिका और चीन की मुद्रास्फीति के आंकड़े भी जारी होंगे. यूके का जीडीपी का आंकड़ा शुक्रवार को जारी किया जाएगा.
We've got two callers online from Delhi. First we go to Pankaj. Big hello to you, Pankaj. Please ask your question.
Yeah, good evening, Market Mantra team को.
जी.
मैम, मेरा सवाल ये है कि मैं ETF buy करता हूँ कुछ इंडेक्सेस का. तो क्या सेम इंडेक्स का म्यूचुअल फंड बाय करना और सेम इंडेक्स का म्यूचुअल फंड एंड ETF बाय करना सेंस डज इट मेक एनी सेंस कि दो एक ही इंडेक्स का म्यूचुअल फंड और ETF दोनों हम रखें, कोई इसमें बेनिफिट होगा या फिर दोनों में से कोई एक ही रखना चाहिए? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन
राइट पंकज? सिंस both of the kind of funds would invest or get you the same kind of exposure, actually it does not make much sense. The only difference here is that ETF requires you to have a DMAT and you can't really put your investments on autopilot because you cannot instruct the mutual fund on your behalf to cut XYZ amount every month and invest from your behalf in the fund. In case of ETFs, you will actually have to do it by yourself. And if you already have been able to do that, you might as well continue. The only thing one needs to ensure is that the ETF has sufficient liquidity in the market for you to continue buying.
अगले कॉलर है दिल्ली से सतीश. स्वागत है आपका, सवाल पूछे.
मैम, माय क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड टू मास्टर गेन, मास्टर प्लस एंड मास्टर शेयर of unit scheme, how to find
Satish,
out...
Satish, I'm sorry, we can't hear you. Could you repeat, please?
Master share.
Master share.
My question is, what happened to master share, master plus and master gain share of UTI?
Okay.
And how to find it out, what happened to them?
Right. So the UTI master share has been over the years now renamed as UTI large cap. And for the UTI master gain that you mentioned, in 2021 it was rebranded as UTI Flexi Cap. So those funds do exist, just that a change of name has happened there.
From Kolhapur, we are joined in by Ratnakar. A warm welcome, Ratnakar.
Hello, good evening, sir.
Good evening, please ask.
हाँ, मेरे दो तीन छोटे सवाल हैं. एक पहला सवाल है,
दो पे रहते हैं
Ratnakar. गोल्ड का जो म्यूचुअल फंड रहता है वो कंटिन्यू करना चाहिए क्या? ये एक सवाल है.
no, वे रिपीट करेंगे आप सवाल. रत्नाकर, कैन यू हियर अस? वी कांट, वी डिड नॉट गेट योर फर्स्ट क्वेश्चन.
गोल्ड ETF गोल्ड का जो म्यूचुअल फंड है वो रखना चाहिए, वो बढ़ाना चाहिए कि निकालना चाहिए?
ओके. सेकंड
दूसरा सवाल है कि ईएलएस जो चल रहा है क्योंकि अभी ईएलएसएस में न्यू रिजिम लेगा तो ईएलएसएस का कुछ फायदा नहीं है.
ओके, सो दीज आर द टू क्वेश्चंस ही हैज, ईटीएफ गोल्ड एंड ईएलएसएस
न्यू रिजिम में.
राइट, सो रत्नाकर जी, जो आप गोल्ड ईटीएफ के लिए मेंशन कर रहे हैं कि परसेंटेज बढ़ानी चाहिए या कम करनी चाहिए, गोल्ड एज एन एसेट क्लास आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ 10% रख सकते हैं अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का. अगर आपका वो उतना बनता है जितना अभी है तो फिर आप रहने दीजिए. अगर आप उससे ज्यादा, आप 10 तक भी नहीं पहुंच रहे हैं और आप फिर भी गोल्ड का एक्सपोजर चाहते हैं तो आप बिल्कुल उसमें और इन्वेस्ट कर सकते हैं. गोल्ड बेसिकली ये रहता है कि जैसे इक्विटी मार्केट्स में हमें फियर दिखता है, अनसर्टेनिटी दिखती है, तो गोल्ड एज अ हेज काम आ जाता है. तो आप उसको एक मिनिमम 10% का एलोकेशन दे सकते हैं. एंड जो आपका दूसरा सवाल है ईएलएसएस के लिए, तो आप सही कह रहे हैं कि अभी न्यू रिजीम आ चुका है. काफी लोग अभी भी हैं थोड़े बहुत जो ओल्ड रिजीम में होंगे जिनके लिए ईएलएसएस फंड्स अभी भी एक अच्छा ऑप्शन है फॉर सेविंग टैक्सेस. वो जो इन्वेस्टमेंट आपने करी हुई है, ईएलएसएस एक्चुअली 3 ईयर लॉक इन के बाद ही आप रिडीम कर सकते हैं. बट मैं यहां पर आपको ये कहना चाहूंगी, अगर आपका वो लॉक इन हो भी गया है खत्म, तो अगर आपको उस पैसे की जरूरत नहीं है, आप उसको वहां पे रहने दे सकते हैं, वो मार्केट के साथ बढ़ता रहेगा. हाँ, अगर आप और फंड्स में उसे इन्वेस्ट करके दूसरा टाइप का एक्सपोजर चाहते हैं तो फिर आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं. बट जनरली मेरी समझ में ऐसा रहता है कि जब हम अपना पैसा, हमें जरूरत नहीं है और हम निकाल लेते हैं, तो वंस इट हिट्स आवर अकाउंट काफी चांसेस होते हैं कि वो कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है. तो अगर आपको उसकी जरूरत नहीं है, आई वुड से आप उसको अभी वहीं पे रहने दीजिए.
जी, अगले कॉलर है दिल्ली से योगेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछे.
जी नमस्कार आप सभी को और सबको रामनवमी की बहुत बहुत बधाई. मेरा जो सवाल है, मेरा सवाल ये है कि जब हम लोग इमरजेंसी फंड बनाते हैं, इमरजेंसी फंड के लिए हम लोग लिक्विड फंड की बजाय अगर हम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड यूज करते हैं तो उसमें कितना डिफरेंस है, क्योंकि दोनों ही ऑलमोस्ट सिक्योर है, तो क्या इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि अगर हम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड यूज करें लिक्विड फंड की बजाय. एक मेरा दूसरा सवाल ये है कि कॉन्ट्रा जो म्यूचुअल फंड है, कॉन्ट्रा कैटेगरी में हमारे पास कितने फंड्स अवेलेबल हैं और इनमें से कौन सा बेस्ट रहेगा.
जी, तो जो आपका पहला सवाल है कि
इमरजेंसी फंड,
इमरजेंसी फंड के लिए आप लिक्विड फंड्स और अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में कितना फर्क रहेगा, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनमें फर्क बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा आपको. एक्चुअल में फर्क बस यही होता है कि जो लिक्विड फंड्स होते हैं वो 3 महीने में जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज मैच्योर होती हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं. अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन आप लगा लीजिए 6 महीने की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपको कुछ प्रतिशत ज्यादा दे देते हैं. बहुत पॉइंट्स में वो डिफरेंस रहता है, बट अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन में देखा गया है जनरली हिस्टोरिकली कि थोड़ा सा हायर क्रेडिट रिस्क रहता है, तो वो उन बॉन्ड्स का भी एक्सपोजर ले लेते हैं जिनकी जो क्रेडिट रेटिंग होती है वो थोड़ी सी कम रहती है. बट अगर आप इमरजेंसी फंड के लिए लगाना चाह रहे हैं तो दोनों ही आपको सिमिलर टाइप ऑफ रिटर्न्स दे सकते हैं, तो आप लिक्विड और अल्ट्रा शॉर्ट में से कोई भी चूज कर सकते हैं. अगर आप ऑलरेडी लिक्विड में इन्वेस्टेड हैं तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप उससे निकाल के अल्ट्रा शॉर्ट में इन्वेस्ट कर लीजिए.
इनका एक और सवाल था कॉन्ट्रा फंड.
राइट, सो कॉन्ट्रा फंड्स जो आप कह रहे हैं कि कितने एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, तो काफी सारे फंड्स हैं जो अभी एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में. जैसे एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है, इन्वेस्को का कॉन्ट्रा फंड है, एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है. कॉन्ट्रा एज अ स्ट्रैटेजी आई वुड से कि नंबर ऑफ फंड्स आपके पोर्टफोलियो में कितना रहे इज समथिंग जो आपका कॉल रह सकता है. आप 2 फंड्स भी अगर कॉन्ट्रा या वैल्यू स्टाइल के ले लेते हैं तो आपके पोर्टफोलियो को सफिशियंट स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, ताकि अगर कोई पर्टिकुलर स्टाइल फेवरेबल चल रहा है मार्केट में और आपके पास उसका एक्सपोजर नहीं है, आप मिस करेंगे, तो वो आपको 1-2 फंड से भी एक्सपोजर मिल जाएगा.
A while back, we had a caller who asked about gold, gold ETF. But the general Indian mentality is that I want to keep physical gold with me. So what would you recommend? Because if I were to say, I'll keep 10 grams of gold with me versus buying ETF in gold.
Right. So I would actually want to highlight the psychology behind it. So if I am keeping that 10 gram of gold with me, I'll always be worrying about it. Because one, I would not want to keep it with myself because that would increase the worry. The other, if I'll store it somewhere, there will also be some storage costs that will get attached to it. instead of holding it in this way as a paper asset, you at least get comfort in your mind and you are able to reduce that storage cost.
It's secure,
that is assigned.
Is what
right.
you say.
Yeah.
अगले कॉलर है जयपुर से जितेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
हाँ, रामनवमी को सबको बधाई हो सर जी। और पूछ रहा था कि हमने ये देखा कि सर कि एक एक ही दो फंड से आदमी का पूरा काम चल जाता है, तो मैंने मल्टी कैप को रखा हुआ है, ऐसे मेरे दो तीन छोटे छोटे अमाउंट का जो है ना सिक्योरिटीज फंड में भी है, तो उसको एज इट इज छोड़ दें या इसको मल्टी कैप में सब ट्रांसफर कर ले फंड?
जी जितेंद्र जी, आई वुड से अगर आपके जो थोड़े बहुत सेक्टोरियल फंड्स में हैं एंड आप उन सेक्टर्स में आगे जाकर बढ़ोतरी का बिलीफ रखते हैं तो आप उनमें बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस मैं यहां पे ये हाईलाइट करना चाहूंगी कि जो मल्टी कैप फंड है वो आपको एक डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर दे रहा होता है, किसी एक तरीके के सेक्टर या एक टाइप की कंपनी पे आपका पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस डिपेंडेंट नहीं रहती है, ये बस एक बेनिफिट हो जाता है। मैं आपको यहां पर ये जरूर बोलूंगी कि आप अपने मल्टी कैप फंड में जो SIP कर रहे हैं उसको आप थोड़ी ज्यादा रख लीजिए वर्सेस जो आप अपने सेक्टोरियल फंड्स में कर रहे हैं।
जी,
मूविंग ऑन, द ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस डिक्लाइंड ओवर 2.5% लास्ट वीक एज इन्वेस्टर्स सोल्ड ऑफ बुलियन टू कवर देयर लॉसेस फ्रॉम अ वाइडर मार्केट मेल्टडाउन ऑन कंसर्न्स अबाउट अ ग्लोबल रिसेशन। Spot gold ended the week at $3,035 an ounce after hitting a record high of $3,167.6 on Thursday. Gold, however, is still up over 15% this year, driven by buying from central banks and its appeal as a safe hedge against economic and geopolitical uncertainties. The dollar index rose 0.7% against its rivals. A higher dollar makes greenback price bullion more expensive for overseas buyers. We have another caller from Odisha with us. A warm welcome.
Hello, sir.
जी, सवाल पूछे अपना।
सर, मेरा म्यूचुअल फंड में बहुत सारा मैं रखी हूँ, उसमें मुझे कुछ चेंज करना है क्या, इसके लिए मैं मुझे पूछना है आपसे।
जी, पूछे।
ये कैनरा रोबेको इंफ्रा में मंथली SIP 3000 का और लमसम 1,00,000 का है। टाटा बिजनेस साइकिल फंड में मंथली SIP 3000 का है। HDFC डिफेंस फंड में मंथली 3000 का है। यूनियन फ्लेक्सी कैप का मंथली SIP 3000 का है। बजाज फाइनेंस लार्ज एंड मिड कैप में मंथली SIP 3000 का है। बजाज फाइनेंस हाइब्रिड फंड में 2.5 लाख है और SBI कंजप्शन अपॉर्चुनिटी फंड में 1,000 है SIP और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में मंथली 3,000 का SIP चल रहा है सर।
बिल्कुल। सो मैं यहाँ पर एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगी कि आपने जैसे जो फंड्स मेंशन करे HDFC डिफेंस या फिर बजाज फिनसर्व के लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, ये काफी नए फंड्स हैं, इनमें अभी उतनी हिस्ट्री नहीं है और हो सकता है आप ही वो फ्यू इन्वेस्टर्स हैं जिनके थ्रू ये फंड्स अभी स्टार्ट हुए हैं। आई वुड से कि वाइल जो सेक्टोरियल फंड्स है, जैसे मैंने पहले बताया कि इनमें हेविली डिपेंड नहीं रहना चाहिए, अच्छी बात यह है कि आप SIP के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं बस आपको बोलूंगी कि आप अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का उसको ज्यादा बड़ा पोर्शन ना बनने दें। जो फ्लेक्सी कैप टाइप के फंड्स हैं जैसे आपने बताया, नाम मुझे अभी एकदम से ध्यान नहीं आ रहे हैं, बट फ्लेक्सी कैप टाइप के फंड्स को अपना कोर बनाइए। जो आपने इतने सारे फंड्स कलेक्ट करे हुए हैं, आई वुड से कि उनको आप रिड्यूस करके देखिए कि कौन से अभी आपके पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं बना रहे हैं।
जी स्नेहा, मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जी धन्यवाद,
थैंक यू फॉर बीइंग विद अस स्नेहा। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर एज्ड 15 एंड अबव इंक्रीजेस फ्रॉम नियरली 50% टू ओवर 61% इन 5 years from FY18 to FY24, says MOSPI data. After snapping 2 weeks of rising streak, domestic markets to focus on RBI policy meet, quarterly earnings and tariff announcements for Q's next week. And global gold prices decline over 2.5% last week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.